क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें।
इंस्टाग्राम पर रील्स ऊपर नीचे करते हैं, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग इन्फ्लुएंस होता है। लोग क्या सोच रहे हैं आप वो पता लगा सकते हो,
और शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता होगा।
बिल्कुल, आप प्रेजेंट में सोचते हो, उनके पास आपका पूरा 10 साल का चिट्टा फट्टा होता है। तो वो ये इंसान किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा, आपसे बेटर एल्गोरिथम समझती है।
बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है और इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई?
जितना चीज रेयर होती है और जितना डिमांड होती है उस चीज की उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन की जो सप्लाई है, जितना दुनिया में बिटकॉइन मैक्सिमम आ सकता है वो है 21 मिलियन जो दुनिया में मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ऊपर आप एक बिटकॉइन नहीं बना सकते।
दोस्तों, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पीछे का एक मोटिव था फाइनेंशियल एडुकेशन, यानी कि पैसों को लेकर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना देश भर। आज के जमाने में क्रिप्टो करेंसी एक फाइनेंशियल टूल बन चुका है पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में। क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, क्रिप्टो के बेसिक्स क्या है, क्रिप्टो के ABCs और एडवांस क्रिप्टो नॉलेज आज आपको मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। सुमित गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ CoinDCX, आज हमें क्रिप्टो के बारे में सिखाएंगे आसान तरीके से। यह सुमित गुप्ता ऑन TRS हिंदी। सुमित गुप्ता भाई, इधर रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है।
थैंक यू रणवीर भाई।
क्यों स्माइल कर रहे हो?
ऐसे आप स्माइल कर रहे हो इसलिए।
ओके, पिछली बार इंग्लिश पॉडकास्ट पे स्माइल करते करते आपने बहुत कुछ सिखा दिया दुनिया को। आई डोंट थिंक एनी इंग्लिश पॉडकास्ट ऑफ आवर्स हैज गॉट सो मच इंटरनेशनल अटेंशन एंड रिकॉग्निशन। जो चीज़ें आपने क्रिप्टो के बारे में सिखाई, ब्लॉकचेन के बारे में सिखाई, वैसा कॉन्टेंट शायद दुनिया में नहीं है। पर हमने एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक क्या थी आपके अकॉर्डिंग?
हिंदी में नहीं किया।
एग्जैक्टली, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है दुनिया का। अगले 10 सालों में लोग बहुत पैसे बनाएंगे यहाँ बैठकर, अपने घर में बैठकर। दे डोंट नीड टू गो टू मुंबई और दिल्ली, जहाँ आप बसे हो वहीं रहकर आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो अगर आपने टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा तो। यू अग्री?
यस।
ओके, आप IITian हो, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, आपकी एक यूनिकॉर्न कंपनी है CoinDCX, एंड फॉर मी डेफिनेटली इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। एंड आई नो कि आप कहोगे कि आप भी सीख रहे हो, पर जो इंसान एकदम डीपली किसी भी सब्जेक्ट को सीखता है वो इंसान उस सब्जेक्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर भी पाता है। एंड दैट्स वाई आज के पॉडकास्ट में हम आपसे क्रिप्टो के ABCs बेसिक्स, Web3 के ABCs बेसिक्स, ब्लॉकचेन के ABCs बेसिक्स और NFTs के बेसिक्स सीखेंगे। सुमित गुप्ता भाई, अब क्या फील हो रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है हिंदी में भी डिस्कशन करके।
ओके, तो मान लो अगर हमारी ऑडियंस को क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, Web3 के बारे में कुछ नहीं पता, इस सब्जेक्ट की शुरुआत आप कैसे करोगे?
क्रिप्टो ब्लॉकचेन के बारे में सीख के चालू कर सकते हैं, एंड देन जो NFT है, Web3 है, उसके बारे में वी कैन।
ओके, तो एक सिंपल सवाल है जो मैंने आपको इंग्लिश पॉडकास्ट में भी पूछा था। अगर किसी ने एक बिटकॉइन खरीदा होता 2010 में, 12 साल बाद 2022 में, उसकी रकम क्या होती उस बिटकॉइन की?
अभी उसकी रकम चल रही है 30 लाख रुपए।
ओके,
पर बिटकॉइन।
ओके,
तो अगर आपने 2010 में खरीदा तो वो नेग्लिजिबल प्राइस का था, मे बी 2-5-10 रुपए का होगा, और अभी 30 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती।
और मान लो अगर आपने 1,000 रुपए खर्च किए होते बिटकॉइंस पर 2010 में,
100 करोड़ से भी ऊपर होता।
सिर्फ 1,000 रुपए, 1,000 रुपए टर्न इनटू 100 करोड़। और आपके अकॉर्डिंग एज एन इंजीनियर ऐसी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी Web3 में?
है, रिवॉर्ड्स शायद उतना ज्यादा ना हो, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी में जितना जल्दी आप बिलीव करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, रिवॉर्ड्स उतने ज्यादा मिलते हैं। तो 2010 एक ऐसा समय था जहां पे बिटकॉइन के बारे में शायद ही बहुत लोगों ने सुना, बहुत ही कम लोग थे जिनको पता था इसके बारे में। इसीलिए उन लोगों ने इतना ज्यादा अपसाइड मिला, उनको रिवॉर्ड मिला, रिटर्न मिला। बट जितना जितना लोग लेट आते गए उतना रिस्क कम होता गया और रिवॉर्ड भी कम होता गया। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, ज्यादा रिस्क लेते हैं ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, कम रिस्क लेते हैं तो कम रिवॉर्ड मिलता है।
तो इस गेम में इन्फॉर्मेशन इज किंग।
इन्फॉर्मेशन इज किंग, एंड आप जितना ज्यादा अपने आप को अपडेटेड रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप ऐसी चीजों में आप अच्छा रिवॉर्ड पा सकते हो।
ओके चलो इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट होती क्या है और इंटरनेट इज इवॉल्विंग इनटू व्हाट अकॉर्डिंग टू यू?
तो चालू करते हैं इंटरनेट की जर्नी से।
ओके
है ना तो आई थिंक 1992 में एक साइंटिस्ट था स्विट्जरलैंड में, साइंटिस्ट नेम टिम बर्नर-ली, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का आविष्कार किया जिससे आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। एक ऐसी चीज जो कि आज हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, आई थिंक ऑन एन एवरेज 3 से 10 घंटे लोग स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे, इतना ज्यादा इंटीग्रल है। वो जर्नी 30 साल पहले एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से चालू हुई थी, जब वो तो किसी को पता भी नहीं था इंटरनेट 30 साल के अंदर, जस्ट 3 दशकों के अंदर इतना बड़ा बन जाएगा। और आज इतना मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर चलते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल,
इसका मतलब क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है?
एक प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक चीज जो सारे लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कुछ बोला राइट, तो अब 0101 में ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो वो डिकोड कैसे करना है, क्या चीज से आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन तो
ओके मैं एक एक थोड़ा एनेक्डोट देना चाहूंगा। जो लोग नॉन इंजीनियर्स हैं, बेसिकली मान लो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो और आप ए की दबाते हो या बी की दबाते हो या सी की दबाते हो, हर की के लिए एक कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कोड्स होते हैं, 0 1 के कॉम्बिनेशन लेके। एनी लेटर, एनी सिंबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस,
जीरोस एंड वंस। पूरी डिजिटल दुनिया इज ऑल जीरोस एंड वंस।
और एक्चुअली जीरोस एंड वंस कंप्यूटर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी या नो इलेक्ट्रिसिटी होती है।
हाँ, इट्स लाइक येस और नो, इट्स बुलियन। मतलब जीरो मतलब, और उसका कॉम्बिनेशन आप 0 1 के कॉम्बिनेशन से, लेट्स से अगर आप 3 बोल रहे हो तो आप 8 different चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 0 0 इज समथिंग एल्स, 1 1 1 इज समथिंग एल्स, एंड उसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और। तो वैसे कंप्यूटर चलता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैब्लिश हुआ, एंड वो फिर आफ्टर मेनी ईयर्स वो आज का इंटरनेट, और आज हर कुछ हो सकता है इंटरनेट के ऊपर। तो पहले जब इंटरनेट नया आया था तो लोग वेबसाइट स्टैटिक पेजेस पढ़ते थे कि किसी ने अपनी वेबसाइट होस्ट करी है और एक पेज है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो बहुत स्टैटिक वेब पेजेस थे उसको,
जैसे ब्लॉग्स,
जैसे ब्लॉग्स हो गया, जैसे एक वेबसाइट हो गई जहां पे कोई अपने बारे में बता रहा है जिसपे आप कुछ कर नहीं सकते।
और तब भी multi-billion-dollar कंपनीज बनी थी, जैसे कि yahoo.com, जैसे कि msn.com, ऐसी कंपनीज तब के इंटरनेट जनरेशन से।
हाँ, मतलब उस टाइम पे भी कंपनीज बनी थी बहुत सारी, फिर वो ग्रो होती गई जैसे इंटरनेट ग्रो होता गया। तो वो एक इंटरनेट था जिसको बोलते हैं web 1, फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट, वो 2004 के लगभग तक चला था। और जिन लोगों ने बचपन में इंटरनेट यूज किया होगा, बहुत स्लो था, आप एक लैन केबल कुछ लगाते हो, वो डॉट 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 दिखा के एक वेब पेज धीरे धीरे लोड होता है, फिर यहाँ पे इमेज लोड हो रही है, बहुत स्लो था और बहुत बेसिक था, बहुत ही बेसिक, राइट? दैट वाज द फर्स्ट एरा ऑफ द इंटरनेट। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और आती गई, फिर आया web 2, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो और आप रिएक्ट भी कर सकते हो,
जैसे आप लाइक दे देते
हो, लाइक दे दिया आपने, रीट्वीट कर दिया उस चीज को, आपने कमेंट कर दिया, सो यूजर्स जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा और इमर्सिव हो गया वो,
मतलब मोस्ट इंडियंस एक्चुअली यूज web 2, बिगन यूजिंग इंटरनेट विद web 2।
हाँ, जब इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में बहुत इंटरनेट आया है,
फेसबुक फैल गया,
ऑर्कुट था एक जमाने में, तो वो web 2 का एरा था और सोशल मीडिया ने इसको बहुत आगे लेके गए वो, राइट? उससे एक्सपीरियंस भी थोड़ा इंटरेक्टिव होता गया, बट इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा डेटा जाने लगा।
ये प्रॉब्लम था web 2 का,
ये web 2 का प्रॉब्लम था, जहां आई थिंक जो कंपनीज थी web 2 कंपनीज, वो जब इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ, बिलियंस ऑफ लोग यूज करने लगे, राइट? तो उनको रियलाइज हुआ कि ये डेटा की वैल्यू है, डेटा की वैल्यू है, इस डेटा को मोनिटाइज कर सकते हैं वो, ये डेटा को यूज करके एड दिखा सकते हैं, जिससे जिस कंपनीज वो एड दिखाने के उनको पैसे देंगी। तो ये उनका मैकेनिज्म था जिससे वो पैसा कमाते थे, रेवेन्यू कमाते थे। फेसबुक जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर कमाती थी बाय जस्ट ये डेटा यूज करके, राइट? बट लोगों को रियलाइज हुआ कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा बहुत कीमती है, और प्राइवेसी के लिए, मल्टीपल रीजंस के लिए, ये डेटा लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस में इलेक्शन चल रहे थे, या आप रियलाइज करेंगे जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स ऊपर नीचे करते हैं, या फिर आप ट्विटर पर फीड ब्राउज करते हैं, फेसबुक देखते हैं, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग इन्फ्लुएंस होता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली. तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आप वो पता लगा सकते हो बेस्ड ऑन वो क्या कर रहे हैं उस अपने प्रोफाइल के अंदर.
और शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता होगा.
बिल्कुल, आप प्रेजेंट में सोचते हो, उनके पास आपका पूरा 10 साल का चिट्टा फट्टा होता है
फ्यूचर.
तो हाँ, वो आपके डेटा पॉइंट से तो आप एक्सट्रापोलेट करके बता सकते हो, अच्छा ये इंसान किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा, ये इंसान कैसे सोचता है. तो वो सारे चीजें आपसे बेटर एल्गोरिथम समझती हैं, उनके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, राइट, हम जैसे लोगों के लिए प्राइवेसी के हिसाब से.
एक थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं. वेब टू के जो सीईओज है, जैसे मार्क जकरबर्ग ले लो, जो गूगल के ओनर्स है, इन लोगों के पास अभी आपकी डेटा है. ये लोग हो गए बहुत ज्यादा पावरफुल और इनकी कंपनीज हो गई बहुत ज्यादा पावरफुल. वेब थ्री इसलिए बना ताकि इन लोगों से पावर वापस लेकर हम आम जनता में पावर डिस्ट्रीब्यूट करते. ये वो वेब थ्री की फिलॉसफी होती है. Am I right?
Yeah, decentralization. Centralization fundamentally मतलब पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि रिस्की होता है फॉर एनीथिंग, फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज एक चीज होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. अगर एक जगह है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, देन इफ यू, अगर आप वो ब्रेक कर देते हो, देन द एंटायर सिस्टम कैन ब्रेक. तो जितना ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिस्क उतना कम होता है, राइट. अगर एक इंसान पर डिसीजन मेकिंग होती है वर्सेस 100 इंसान पे होती है, तो एक इंसान के करप्ट होने के चांसेस ज्यादा है, 100 लोगों के करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं, राइट. तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज, ये सारी चीजें एज अ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए अच्छी होती है. हाँ, तो वेब थ्री में ये होता है कॉन्सेप्ट कि आप जो पहले जो ये कंपनी सब कुछ ओन करती हैं, आप इतनी एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी का पैसा इन कंपनीज को मिल रहा है. वेब थ्री में ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप इंटरनेट पे जब इंटरैक्ट कर रहे हो, तो आप एक उसके शेयर होल्डर हो, आप उसके ओनर हो नेटवर्क के, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा जितना आप एक्टिविटी करते हो वेब थ्री के अंदर. तो आप सिर्फ इंटरैक्ट ही नहीं, बट आप एक ओनर भी हो उस नेटवर्क के, एंड उससे लिंक होता है क्रिप्टो. एक क्रिप्टो जो होता है वो उस ओनरशिप दिखाने का या ओनरशिप एस्टैब्लिश करने का एक मीडियम है.
बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है और इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई?
सिंपल डिमांड सप्लाई. बिटकॉइन अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन दुनिया में, अच्छा जो भी वैल्यूएबल चीजें होती है ना, उनकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहती है. अपन एक बात कर रहे थे कि अर्थ, अब अगर अर्थ में जो जमीन है वो इनफाइनाइटली अवेलेबल होती, तो शायद जमीन की वैल्यू उतनी नहीं होती. अगर मुंबई में आप जितना चाहे उतना आप जमीन ले सकते हो, शायद उतनी वैल्यू नहीं होती. अगर गोल्ड आप आउट ऑफ थिन एयर बना सकते, तो शायद गोल्ड की वैल्यू उतनी नहीं होती. गोल्ड आप केमिकल रिएक्शन से बना सकते हो, शायद इतनी वैल्यू नहीं होती. डायमंड आप इजी, जितना चीज रेयर होती है और जितना डिमांड होती है उस चीज की, उतनी ज्यादा वैल्यू होती है. बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन की जो सप्लाई है, जितना दुनिया में बिटकॉइन मैक्सिमम आ सकता है, वो है 21 मिलियन.
ओके,
21 मिलियन बिटकॉइन दुनिया में आ सकता है. 2.1 करोड़ बिटकॉइंस जो दुनिया में मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ऊपर आप एक बिटकॉइन नहीं बना सकते.
और
ये प्रॉपर्टी है.
ये सिस्टम किसने बनाया किसी को पता नहीं,
सतोशी नाकामोतो. सो जब उन्होंने व्हाइट पेपर लिखा, तो उन्होंने डिजाइन ऐसा किया है, कोड में लिखा है, अब आप कोड को जाके चेंज नहीं कर सकते. कोड में लिख दिया है कि 21 मिलियन बिटकॉइंस मैक्सिमम माइन हो सकते हैं. अभी हम लोग 18-19 मिलियन में चल रहे हैं, एंड इसकी सप्लाई कैप्ड है, इससे ज्यादा बिटकॉइन हो नहीं सकते, पर डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसकी प्राइस बढ़ती है. इमेजिन करो अगर बिटकॉइन की सप्लाई कैप्ड नहीं होती, तो इसकी प्राइस इतनी वैल्यू नहीं बढ़ती ओवर टाइम.
इस इंसान ने या इस ग्रुप ऑफ इंसानों ने पैसों के बारे में पहले बहुत सोचा, और फिर ये देखा कि दुनिया भर किस तरह के पैसे चल रहे, पेपर मनी चल रहा है, और फिर उसके अगेंस्ट एक थियोरेटिकल बहुत पावरफुल सिस्टम बना दिया.
टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल थी. आई थिंक जो एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन का जो कोर एप्लीकेशन है, वो बहुत पहले चलता था. बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट दुनिया का पहला सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो.
ओके.
और जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने कुछ लालच से नहीं बनाया. उन्होंने देखा 2008 में जो क्राइसिस आई थी, आपने देखा होगा 2009 में ये पेपर आया था, और 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, राइट, उस टाइम पे रियलाइज किया कि ये जो हमारा पैसा और जो हमारा सेविंग्स है उसका वैल्यू कितना है कितना नहीं है वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो उन बैंक्स पे डिपेंड करता है जो कि बहुत ज्यादा पावर और कंट्रोल रखते हैं, राइट, या सेंट्रल बैंक्स पे डिपेंड करता है कितना पैसा प्रिंट करते हैं. जैसे आपने देखा होगा पिछले 2 साल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट हुआ है. तो जब डॉलर्स प्रिंट होता है तो मार्केट में पैसा और आ जाता है. जब और पैसा मार्केट में आएगा तो आपके पास जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर, क्या खरीद सकते हो, वो कम होता जाता है जब मार्केट में बहुत पैसा है.
और ये इन्फ्लेशन का लॉजिक होता है.
ये इन्फ्लेशन का लॉजिक होता है. और आज हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे है बिकॉज ये पैसा प्रिंट हुआ है.
मैं बेसिकली एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना चाहूंगा. मान लो आप इंडिया में बैठे हो, आप कोई यूएस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, तो आपके पैसे आप अर्न करोगे डॉलर्स में, यूएस की कंपनी आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजेगी, बीच में दोनों गवर्नमेंट्स वो चीजें स्कैन कर रही है, दोनों गवर्नमेंट्स को आपके बारे में पता चल रहा है, उस कंपनी के बारे में पता चल रहा है, शायद टैक्सेशन हो रही है उस पैसों पर. आई थिंक टैक्सेशन इज गुड, टैक्सेशन अच्छी चीज होती है, पे योर टैक्सेस, ये भी कहना चाहूंगा. आर्मी फंड होती है. पर मान लो अगर आप किसी यूएस कंपनी से पैसे कमा रहे हो, तो ये जो बीच के बॉडीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज, उस ट्रांजेक्शन से थोड़े पैसे डेफिनेटली कमा रहे. अगर पूरी दुनिया बिटकॉइन यूज करने लगी या क्रिप्टो करेंसीज यूज करने लगी, तो वो जो बीच के बॉडीज होती है उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी.
जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, राइट, करंट बैंकिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे उसके अंदर वो ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे मशीन्स होती हैं, हजारों लोग काम कर रहे होते हैं वो ट्रांजेक्शन करने में, राइट, एंड वो इनएफिशिएंट होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस से पैसा भेज रहे हो, इंडिया में 80 बिलियन डॉलर हर साल भारत के अंदर आता है एज इनवर्ड रेमिटेंस, वो 80 बिलियन डॉलर में इंडियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स फीस पे करते हैं वो सिस्टम्स चलाने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स. इस सिस्टम में जरूरत ही नहीं है. इस सिस्टम में ये बहुत चीप, लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट अमाउंट आप भेज सकते हो. अभी आप फीस पे करते हो 1%, 2%, 5%, 3 दिन लगते हैं. यहाँ पे ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत एफिशिएंटली, बहुत फास्ट, बहुत चीपली ये ट्रांजैक्शन हो सकता है. तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी.
ऐसा नैरेटिव है कि अगर पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसीज यूज करने लगी तो दुनिया भर के गवर्नमेंट्स थोड़े से नॉट कमजोर बट लेस रेलिवेंट हो जाएंगे.
डिपेंड करता है. सो मेरे को ये लगता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, जो पेमेंट्स होते हैं, वो पेमेंट्स गवर्नमेंट अपने अपने कंट्रोल में, अपने सुपरविजन में रखना चाहेगी. जैसे आपने सुना होगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इंडियन गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली वो इवेल्युएट कर रही है, देख रही है वो. तो जो ट्रांजेक्शन है जो आज अपने डिजिटल रुपी में होते हैं, राइट, और ये अनाउंस कर दिया, ऐसा नहीं कि ये हो सकता है नहीं, ये अनाउंस कर दिया है बहुत कंट्रीज ने कि सारा का सारा जो डिजिटल रुपी है ये ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएगा. उसके बहुत फायदे हैं. तो सरकार खुद भी इसकी पोटेंशियल समझती है और इवेल्युएट कर रही है. और सारे के सारे इंटरनेशनल रेमिटेंसेज जैसे बात कर रहे हैं, जो पेमेंट वाला यूज केस है, मेरे हिसाब से वो CBDC पे चलेगा.
ओके.
और जो Web3 की सारी एप्लीकेशन है, राइट, वो उसके अराउंड ये क्रिप्टो यूज होंगे, क्रिप्टो एसेट्स, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मतलब उसका यूज केस है.
जब लोग मेटावर्स एप्स बनाएंगे, NFT एप्स बनाएंगे, वहां ऐसे करेंसीज यूज.
तो इंटरनेट डिजिटल होता जा रहा है, हमने देख लिया है. पहले दुनिया जो चलती थी अभी डिजिटल हो रही है, और बाद में और डिजिटल होती जाएगी.
मतलब हर बिजनेस को डिजिटल बनाया जा रहा है.
बनाया जा रहा है और जरूरत भी है बिकॉज वो एफिशियंट है. दुनिया हमेशा एफिशियंसी की तरफ जाती है,
जैसे UPI.
हाँ, जो एफिशिएंट है वो चलेगा. अगर आपको देखना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आप देखो जिस तरीके से दुनिया भी चल रही है और जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या वो एफिशिएंट है, क्या वो आम आदमी की लाइफ आसान करता है. जिस चीज में पहले मुझे 4 घंटे लगते थे, अगर वो किसी तरीके से 1 घंटे में होती है तो दुनिया उसको अडॉप्ट करेगी. एग्जाम्पल देता हूँ, और आप ये सारे ट्रेंड्स में देख पाओगे. पहले जब नया नया इंटरनेट आया था तो आप पहले पूरा पढ़ते थे, राइट, तो वो उसमें टाइम लगता है. तो मे बी एक ब्लॉग को पढ़ने में आपको 10 मिनट लग रहा है, बट वीडियो एज एन एफिशिएंट वे, वो बहुत जल्दी आपको 30 सेकंड के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बहुत एक्सपीरियंशियल होता है. आप उसको समझते हो, आप एनिमेशन देखते हो आपके दिमाग में बात, तो दुनिया अडॉप्ट कर रही है. वीडियो में आप एक चीज 10 मिनट में समझा सकते हो, अगर वो आप 1 मिनट में समझा पाओगे तो दुनिया उस तरफ भागेगी. तो रील्स आप देखोगे तो कितने सारे लोग रील्स यूज करते हैं, और तो जो भी चीज एफिशिएंट होती है राइट, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 घंटा लगता है राइट, आप अगर ऐसी चीज डिसाइड करो जिससे वो एक इनोवेट करो जिससे वो 1 घंटे में सकता है, तो ऑब्वियसली लोग करेंगे. जैसे सोशल मीडिया है, अभी आजकल लोग जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर आप दूसरा ऐसा तरीका निकाल दो राइट जिससे वही चीज बहुत एफिशिएंटली हो सकती है, तो वर्ल्ड उसको अडॉप्ट करेगा.
पता है, हम चाइना के बारे में बहुत बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एंगल से कि ओ चाइना भी ये करने वाला है, वो करने वाला है. चाइना ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है खुद के सिटीजन्स के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, वो है डिजिटल युआन, डिजिटल वन. आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है उनका प्रोग्रेस, क्या है उनके प्लान्स, क्या है?
चाइना एज अ कंट्री थोड़ा बाहर कम पता चलता है, बट आई थिंक दे बहुत एग्रेसिवली इसको इवेल्युएट कर रहे हैं. जितना मैंने पढ़ा है वो इसको जो CBDC होता है, उसके एक रिटेल CBDC होता है जो कि आम आदमी के एप्लीकेशंस के लिए काम आएगा, और एक होता है होलसेल CBDC जो कि इंस्टीट्यूशनल होता है.
ये हर कंट्री की ये क्रिप्टो करेंसी है,
हर कंट्री का जो रुपी है फियट करेंसी उसका ब्लॉकचेन वर्जन है.
ओके, बेसिकली क्रिप्टो ऑफ करेंसी
ऑफ कंट्री विच इज स्टेबल, बिकॉज कोई करेंसी होती है ना, जैसे करेंसी का प्रॉपर्टी देखो वो ऊपर नीचे नहीं होती राइट. जो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है वो ऊपर नीचे होता है राइट. अब एक रुपए ही रहेगा बट वो ब्लॉकचेन पे रहेगा. बट उससे क्या होगा, उससे फायदा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो राइट, आपने 5,000 रुपए डाला, किसी ने 10,000 रुपए डाला, बैंक के पास बहुत ज्यादा हो गया, बैंक वो लोन देता है. अब वो लोन कैसे दे रहा है, क्या हो रहा है, पैसा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इट्स अ ब्लैक बॉक्स. बट अगर वो ब्लॉकचेन के ऊपर है तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को पूरा उसकी विजिबिलिटी रहेगी, हाउ इज द वो पैसा फ्लो कैसे कर रहा है इकोनॉमी में, जिससे एक NPA कम होगा.
NPA क्या है?
NPA मींस बैंक बहुत जगह इन्वेस्ट करता है. लेट्स से बैंक ने किसी को 10,000 रुपए लोन दिया राइट, उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जब वो वापस आएगा तो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा, कई बार नहीं भी आता राइट. तो अगर बैंक गलत लोन देता है तो वो अच्छा नहीं है, वो बैंक की परफॉर्मेंस खराब करता है. एंड पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक पिछले कुछ सालों में राइट बंद हो गए. आम आदमी का पैसा उनके बैंक में था, इतना हार्ड अर्न मनी राइट, और गलती भी नहीं थी, वो बैंक ने कुछ गलत लोन दिए जिससे बैंक को भरपाई करनी पड़ी और अल्टीमेटली हर्ट हुआ आम आदमी. बट अगर ये चीज ओपन होती, ट्रांसपेरेंट होती, अगर मुझे पता चलता कि बैंक एक कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है और कोलैटरल में कुछ नहीं है राइट, तो और अगर ये ओपन होता तो ये शायद हो भी नहीं पाता ट्रांजैक्शन. तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के लिए जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना अच्छा है, तो ब्लॉकचेन वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है.
आम जनता की लाइफ कैसे बदलेगी, मतलब क्रिप्टो की वजह से, डिजिटल रुपी की वजह से, डिजिटल युआन की वजह से, 5 साल बाद 10 साल बाद इंडिया में क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग?
5-10 साल बाद आई थिंक ग्लोबली, एक तो जितनी सारी कंपनीज हैं राइट, जितनी सारे आप कंपनीज, आप इंटरनेट कंपनी यूज करते हो, मुझे लगता है कि ये सारी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएंगी. मतलब इनका सारा जो डेटा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर, इनके सारे सिस्टम्स ब्लॉकचेन के ऊपर बनेंगे.
एक एक लॉजिक मैं आपको पिच करना चाहूंगा, आपको कि अगर सही लॉजिक है या गलत. जिन कंपनीज को हम अब जानते हैं, वेब टू कंपनीज, फेसबुक, गूगल, जो भी, वो एक तरह की टेक्नोलॉजी पर बनाए गए. अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है ब्लॉकचेन. अब जिन जो भी कंपनीज बनेगी वेब थ्री में, वो उस टेक्नोलॉजी पे बनेगी,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनेगी, वो एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है.
मतलब अलग कोडिंग लैंग्वेज है.
जैसे इंटरनेट पे क्या होता है ना, आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हम इंटरनेट यूज करते हैं पर हमें पता नहीं इंटरनेट चलता कैसे. बहुत लोगों को नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है. एक जैसे अपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है राइट, इसके बट जरूरत भी नहीं है. लोग एंड बेनिफिट लेते हैं कि अच्छा मुझे एक वेबसाइट पर जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मेरा काम हो गया. मुझे लगता है आने वाले 5-10 सालों में बहुत सारी कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकचेन पे होगा, आम आदमी को शायद पता भी ना चले, वो बैकएंड में चल रहा है राइट. बट आप इंटरेक्ट ऐसे कर रहे हो राइट, जैसे कि आप सारी प्रॉपर्टीज उसकी ले रहे हो, बट वो टेक्नोलॉजिकल है. बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट ये ट्रेंड मुझे लगता है. मुझे लगता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो आज अपन यूज करते हैं, लोन लेना, पेमेंट्स, उसके रेमिटेंस हो गया, ये सारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये सारे के सारे ब्लॉकचेन में बनेंगी. इसका एक वर्ड है DeFi, DeFi मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, फाइनेंशियल वर्ल्ड जो सर्विसेज हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है ये DeFi के अंदर आते हैं. जैसे कि अगर आपको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग है, आपको लोन लेना है, आपको बोरो करना है, राइट, आपको लोन लाइक क्रेडिट देना है किसी को ताकि आपको रिटर्न मिले, वो सारे के सारे चीजें DeFi के अंदर बन सकती है और बन चुकी हैं. और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं एवरी डे, हजारों एप्लीकेशंस हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की, जो कि पहले नहीं हो पाता था. आपको एक प्लॉट में इन्वेस्ट करना है, एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं करता आपको एक छोटा सा पार्ट लेने के लिए, आपको पूरा का पूरा प्लॉट लेना पड़ता है. बट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आप उस प्लॉट का छोटा हिस्सा भी ले सकते हो. 100 लोगों ने साथ में आए और उन्होंने एक प्लॉट लिया एज एन इन्वेस्टमेंट, और जब आप बेचोगे तो उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा रिटर्न. तो ये सारे बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती हैं विद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. आप एक शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर SBI का शेयर 1800 रुपए का है, अगर आपका 100 रुपए तो आप आधा शेयर नहीं खरीद सकते, आज के जमाने में अलाउ नहीं करता सिस्टम आपको. बट उस दुनिया में विद DeFi यू कैन परचेज इवन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनी शेयर. वो सारे फायदे होते हैं.
पर जितने भी लिसनर्स इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को किस नजरिए से देख रही है, जो बजट्स में अनाउंसमेंट हुई, मोदी जी क्या सोच रहे क्रिप्टो के बारे में, अमित शाह क्या सोच रहे क्रिप्टो के बारे में, बताइए.
तो जो मेरा मानना है और जो स्टेटमेंट्स आते हैं और जो पता चलता है उससे ये लग रहा है गवर्नमेंट समझती है इसका पोटेंशियल. उन्होंने ओपनली बोल रखा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है देश के लिए, एंड Web3 एज अ टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास बहुत कंफर्टेबल है, बट क्रिप्टो एज अ करेंसी, क्रिप्टो एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, वहाँ पर कुछ रिजर्वेशंस हैं, राइट. बट क्रिप्टो एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट, इज समथिंग जो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है और टैक्स भी लगाया भी, राइट. तो ओवरऑल, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है और टाइम लगता है टेक्नोलॉजी को आने में, ऑर्गेनिकली लोग आएंगे, समझेंगे, सरकार समझेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है
वो. टैक्स एंगल भी एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जैक्टली क्या है वो.
तो टैक्सेशन में अभी जो अपडेट आया है वो ऐसा है कि आप अगर क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा.
मतलब अगर प्रॉफिट्स बनाए 100 रुपए के, 30 रुपए,
आपको 30 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा. जैसे आप शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है.
टैक्स कितना होता है
शेयर मार्केट में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है डिपेंडिंग अपॉन आपका होल्डिंग पीरियड.
ओके,
राइट, 15% 10% वैसे चलता है और डिपेंड करता है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में आप लगा रहे हो.
ओके, आपको लगता है कि फेयर है कि 30% टैक्स लगा?
मुझे लगता है ज्यादा है.
ओके,
मुझे लगता है हायर एंड पे है. बट मुझे, मैंने ये भी देखा है कि ओवर द टाइम ये चीजें जैसे जैसे गवर्नमेंट और कंफर्टेबल होती है ये टैक्स रेट कम होती जाती है.
तो अब एक आम इंसान को, आम भारतीय को क्रिप्टो को किस नजरिए से देखना चाहिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू?
तो ये जो ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो की तरफ देखें, राइट, आई थिंक क्रिप्टो, जैसे आप बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जाता है. मतलब अगर आपका 100 रुपए का आपका पोर्टफोलियो है तो आप उसको एक पोर्टफोलियो का फंडामेंट, इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल होता है कि आप उसको डाइवर्सिफाई करो,
अलग अलग एसेट क्लास,
अलग अलग एसेट में डालो.
मतलब स्टॉक मार्केट में थोड़े पैसे डाल दो, इक्विटी में डाल दो, एटसेट्रा,
रियल एस्टेट में थोड़ा डाल दो, थोड़ा गोल्ड में डाल दो. तो ये डाइवर्सिफिकेशन होता है पोर्टफोलियो का आपका, जितना आपका सेविंग है, आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें आप अलग अलग एसेट्स में डालते हो, राइट. आपने 50% लेट से FD में डाल दिया, 30% म्यूचुअल फंड में डाल दिया, 10% आपने रियल एस्टेट में डाल दिया, 10% गोल्ड में. तो आपको छोटा सा पोर्शन उसका, छोटा सा, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, आपको क्रिप्टो में डालना इज अ गुड आइडिया, राइट. अगेन, नो फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐसा अप्लाई करता हूँ कि जितना ज्यादा आप, जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में डालने चाहिए, अगर कुछ हो गया सबको नुकसान होता है.
मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब मुझे क्रिप्टो की एडवाइस चाहिए रहती है लाइफ में, मैं आई आस्क सुमित भाई ऑलवेज, मैं इनको पूछता हूँ क्योंकि ये उस डोमेन के एक्सपर्ट है. ये मुझे फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं देते, वो बस ये कहते कि देखो आई वुड डू दिस इफ आई वाज इन योर पोजीशन. उसी नजरिए से मैं लिसनर्स को यह कहना चाहूंगा कि मैं खुद रफली मेरे जितने भी सेविंग्स है उसके 5% मैंने क्रिप्टो में डाल दिए. स्पेसिफिकली मैं बिटकॉइन और इथेरियम में इन्वेस्ट करता हूँ.
कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट मत करो जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, या फिर आपको लगता है अगर डाल दिया, और क्योंकि जितना आपका आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो उतना रिस्क भी बढ़ता है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टिंग।
मैं आपकी ऐप यूज करता हूँ, बट वो साइड नोट, एनीवे कहिए।
तो बहुत, जैसे आप शेयर मार्केट में आप ब्लू चिप स्टॉक्स में आप पैसा डालते हो, सिमिलरली क्रिप्टो में भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी जगह डालो जो कि लंबे टाइम के लिए आपको रिटर्न देंगे। ऑफकोर्स आपका रिवॉर्ड उतना ज्यादा नहीं होगा, बट इंपॉर्टेंट आपका पैसा सेफ रहेगा।
तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि क्रिप्टो स्टॉक्स जैसे नहीं है, क्रिप्टो रियल एस्टेट की तरह होता है,
आपको लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को इसको फटाफट पैसा बना लेते हैं, उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच एट ऑल। आपको क्रिप्टो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरह देखो, और अगर आप, बहुत सारे लोग मैंने क्रिप्टो के अंदर सोचते हैं कि 10 गुना पैसा करना है, वो गलत नजरिया है। वैसे नहीं होता, अगर पैसा मिल रहा है तो रिस्क भी बहुत होती है, राइट। तो जरूरी है कि आप उसके बारे में फंडामेंटल समझें, फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते बिटकॉइन क्या है तो इन्वेस्ट मत करो। आप इन्वेस्ट तब करो जब आप समझते हो और आप उसमें बिलीव करते हो और आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हो। अगर आप आज खरीदा कल बेचा उस नजरिए देखो तो आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो, राइट।
तो बेसिकली हमने बिटकॉइन के बारे में बातें कर ली, इथेरियम के बारे में बातें करते हैं। पूरी दुनिया इथेरियम में बहुत ज्यादा बिलीव करती है। विटाली ब्यूटरिक जो इथेरियम के फाउंडर है, वो कोई मिस्टीरियस इंसान नहीं है, लोग जानते हैं कि वो कौन है। उनकी एज बहुत कम है, शायद 27, और दुनिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स बन चुके हैं। तो उनकी कहानी बताइए कि उन्होंने इथेरियम के बारे में कैसे सोचा और इथेरियम क्या है, उसका लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर किसी को इथेरियम में इन्वेस्ट करना है, पहले लॉजिक जान
पहले लॉजिक। और बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे इथेरियम क्या है तो आपको पूरा बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसके बारे में पढ़िए, समझिए, और फिर अगर आपको लगता है अच्छी चीज है तो आप इन्वेस्ट करिए। अगर आपको कन्विंस नहीं होता, पढ़ना, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उसके बारे में जो नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप आसानी से समझा सकते हो कि इथेरियम का लॉजिक क्या है?
इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम ब्लॉकचेन, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उससे क्या होता है, जो आपका ट्रांजेक्शन होते हैं वो प्रोग्रामेबल हो जाते हैं। प्रोग्रामेबल मतलब, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन के केस में क्या होता है, मैंने आपको पैसा भेजा या मैंने आपको 0.1 बिटकॉइन या 1 बिटकॉइन ट्रांसफर किया, तो वो हो गया ट्रांजेक्शन। उसके अंदर आप कंडीशन नहीं लगा सकते। बट इथेरियम के अंदर बहुत, बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक, बहुत सारी नई नई एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो रजिस्ट्रार के पास, तो उसमें आप ऐसा इथेरियम में आप कोड कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको पैसा भेजा, जैसे आपको पैसा, बिकॉज चेन पे हो रहा है, तो जैसे ही पैसा रिसीव हुआ वैसे के वैसे ओनरशिप उसकी मेरे पास ट्रांसफर हो गई। तो इफ दिस हैपेंस, अगर ये होता है तो ये होगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल ट्रांजेक्शन्स। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंटरनेट में वो प्रोग्रामेबल हो जाएंगे, उसके बहुत एप्लीकेशंस होते हैं। सारी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में काम आ सकता है, जो सारी करंट रियल वर्ल्ड यूज केसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक, लेट्स से एक कंटेनर है शिप का जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो आप उसको पार्ट्स में भी कर सकते हैं पेमेंट। फॉर एग्जांपल, हर एक किलोमीटर जो ये कंटेनर चलेगा, राइट, उतना फ्रैक्शन पेमेंट रिलीज हो जाएगा, जो कि करंटली अभी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ट्रांजेक्शन आर नॉट प्रोग्रामेबल इन द करंट वर्ल्ड। तो वो सारे एप्लीकेशन ओपन अप हो जाते हैं। और इथेरियम के ऊपर बहुत सारी, जो मैं आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात कर रहा था, बहुत सारी फाइनेंशियल एप्लीकेशन अब इथेरियम इकोसिस्टम के ऊपर बन रही है।
ओके, इथेरियम से रिलेटेड और अनरिलेटेड एक सवाल है, संदीप नेलवाल है कौन और पॉलीगॉन क्या होता है?
संदीप नेलवाल पॉलीगॉन एक चेन है, उसके फाउंडर हैं, और मैं जानता भी हूँ, जब वो स्पेस में नए थे तब से हम बात कर रहे हैं। बहुत ही एक कंपनी है इंडिया की, जो कि बहुत उन्होंने नाम रोशन किया है वेब थ्री की दुनिया में।
दो चीज़ें कहना चाहूँगा, एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, आई थिंक मनीष भाई का ट्वीट था, मनीष पांडे का ट्वीट था, कि 1990s एरो नारायण मूर्ति, 2020s एरो संदीप नेलवाल। लोग कहते हैं कि इंडिया ने वेब 1 के बूम से बहुत बेनिफिट किया था 90s में, अब वेब 3 के बूम से बहुत बेनिफिट करेगा, वेब 2 से ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं किया, कंटेंट क्रिएटर्स ने बेनिफिट किया, शायद नॉट टेक्नोलॉजिकली, नॉट एज मच एज इट कुड हैव बीन।
हाँ, मतलब आई थिंक इंडिया में, जब इंडिया में इंटरनेट आया है तब से बहुत सारे लोगों को जॉब, बहुत फायदे हुए हैं, जॉब मिला है, नई नई इंडस्ट्री। 10 साल पहले शायद ये कोई डोमेन था भी नहीं, बट कितने लोगों को रोजगार मिला इससे, राइट, इंटरनेट के आने की वजह से. तो बहुत ज्यादा फायदा भी मिला इंडिया को. आई थिंक इंडिया में पेनिट्रेशन इंटरनेट का भी बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, बिकॉज इंटरनेट बहुत सस्ता है. इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सस्ता है, और जब इंटरनेट सस्ता होता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो. बहुत लोगों का एफिशिएंसी भी बढ़ी है, और ओवरऑल देश ने तरक्की भी की. और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इंटरनेट ना इंफॉर्मेशन असिमेट्री उसको सॉल्व करता है. मतलब कि दुनिया में क्या हो रहा है, पहले वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत लेट आती थी, बट आज स्प्लिट सेकंड में दुनिया में कुछ भी हो रहा है फटाफट पता चलता है. उससे दुनिया बहुत एफिशिएंट, जो मैं आपको बता रहा था एफिशिएंसी की तरफ जाती है ना, तो एफिशिएंसी बढ़ गई इंटरनेट के आने से. तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है, और मेरे को लगता है आने वाले समय में ये ऐसे और बहुत सारे इनोवेशन होंगे जिससे नए नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी. तो जो लोग भी स्पेस को फॉलो कर रहे हैं उनको लगेगा, उनको पता चलेगा, अच्छा ये स्पेस में ये इनोवेशन हो रहा है, यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ.
एक और चीज कहना चाहूंगा, हाल ही में मैं जब दुबई गया तो दुबई वेब थ्री का हब बन चुका है, और वहां के जो फॉरेनर्स मिले मुझे, उन्होंने मिलकर मुझे एक चीज कही कि यार कि संदीप भाई इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं वेब थ्री में, पॉलीगॉन इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, पर इंडिया में न्यूज मीडिया इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं कर रही. जनरली मीडिया हाइप इतनी नहीं बनी है, ट्विटर पे थोड़ी सी हाइप है, पर मैं ये चाहूंगा कि लोग जाने संदीप नेलवाल के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस टाइप का काम कर रहे हैं. क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंडिया अभी सोने की चिड़िया वापस बनने वाला है, कुछ लोग
ये लोग
इंडिया को वो सोने की चिड़िया बने. आप भी उस लिस्ट में हो, 5000% आप भी उस लिस्ट में हो, बट लोगों को वेब थ्री एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहिए.
बिल्कुल जानना चाहिए. आई थिंक उससे वो इंस्पिरेशंस होते हैं आने वाली फ्यूचर के लिए, वो कुछ काम कर रहे हैं.
और जैसे कि मुकेश अंबानी ने कहा था कि माई फादर टुक 50 years टू बिकम अ बिलियनर, आई टुक 20 years, द नेक्स्ट जेन कैन टेक लेस देन 5 years.
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युट 100%.
तो संदीप नेलवाल के बारे में बातें करनी चाहिए, और पॉलीगॉन के बारे में बातें करनी चाहिए.
मुझे लगता है इंडिया में ऐसे चीजों को एग्जाम्पल बना के लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ताकि ऐसे हजारों संदीप नेलवाल इंडिया से निकले और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करें.
ओके भाई, तो हमने क्रिप्टो के बारे में बहुत बातें कर ली. एक लास्ट सवाल है क्रिप्टो का. अक्सर जब हम पार्टीज के लिए जाते हैं या कोई सोशल फंक्शंस में जाते हैं, यंगस्टर्स हमेशा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की बातें करते हैं एक दूसरे से, कि मैंने ये क्रिप्टो में पैसे डाल दिए. यूजुअली बिटकॉइन इथेरियम की बातें होती है. एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा फॉल्स स्कीम्स भी चलती है क्रिप्टो की दुनिया में, तो अगर आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो उस क्रिप्टो के बारे में जानिए, बहुत अच्छे से जानिए. और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उन्हीं पार्टीज में जो अडल्ट होते हैं 40s में 50s में 60s में, क्रिप्टो को समझ नहीं पाते और तुरंत ये कह देते कि यार आपके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से टेररिज्म फंड हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है और इसके पीछे सच क्या है?
ठीक है, दो पार्ट में इसको कवर करते हैं. पहला जो आपने बोला इन्वेस्टमेंट का, राइट, मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ऐसे इस नजरिए से कि फटाफट पैसा डबल हो जाएगा, और वो नजरिए से नहीं करना चाहिए, और आपको फंडामेंटल समझनी चाहिए. फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि जो क्रिप्टो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, नॉट द प्राइस, लोगों को लगता है कि एक बहुत सिंपल सा कन्फ्यूजन होता है कि अगर एक क्रिप्टो है जिसका प्राइस बहुत कम है, कल को वो बिटकॉइन के बराबर हो जाएगा तो मैं इतना, वो गलत है, ऐसा नहीं होता है. तो वो पढ़ना बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, और बिना जाने सिर्फ इस नज़रिए से कि ये पैसा इतना हो जाएगा वो गलत है. और अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये 10 गुना 100 गुना हो जाएगा मिनिमम, तो आप उन लोगों से दूर रहिए. आप अपनी रिसर्च करो, पढ़ो, और फिर बहुत केयरफुली, बहुत लिमिटेड अमाउंट, जितना आपको लगता है आपके डाइवर्सिफिकेशन के लिए ठीक है उतना ही डालो, पढ़ो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये इन्वेस्टमेंट की हिसाब से बोल रहा हूँ. मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इंडिया में क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर नहीं पता है तो वो गलत है, राइट. ऐसी चीज़ों में डालो जो कि जिनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जितने क्रिप्टोज हैं उसमें बहुत सारे फेल हो जाए, नहीं चले, राइट. तो आप अपने ऐसी जगह पैसा नहीं डालना चाहोगे जो कि 5 साल बाद नहीं सर्वाइव करे. बहुत सारे लोगों ने मीम कॉइन्स में पैसा डाला है, डोज कॉइन, शिबा इनू. तो पढ़ो, समझो, एंड उसके बाद इन्वेस्ट करो. मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहता, बट आई थिंक अगर आप कहीं सुनी होती है कि यार इसने ये बोला इसने डाल दिया तो मैं भी डाल देता हूँ, वो गलत नजरिया है इन्वेस्टमेंट का. पहली बात तो ये. दूसरी बात आपने बोला जो बड़े एडल्ट्स वगैरह लोग होते हैं, या फिर इवन बहुत कई लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्रिप्टो में उसके इलिसिट यूज होते हैं, टेररिस्ट फंडिंग के लिए होता है. इसका आंसर मैं डेटा पॉइंट से देना चाहूंगा. मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था जहां पे लिखा था कि अगर आप देखेंगे कि जो अपना फियट मनी है, जैसे कि इंडियन रुपीज हो गया, डॉलर्स हो गया, यूरो हो गया, ये फियट, इसको बोलते हैं फियट मनी, राइट. फियट मनी में कितना परसेंट ऐसी चीजों के लिए यूज होता है, अगर आप वो डेटा देखोगे तो वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रिप्टो में कितना परसेंट. ऑफकोर्स कुछ होता होगा, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन ओवर द टाइम कम होता जा रहा है. तो एक तो क्रिप्टो में, क्रिप्टो का यूज ऐसी जगह पे कम होता है देन अपना जो INR इंडियन रुपी हो गया, डॉलर हो गया, बिकॉज क्रिप्टो में ट्रेसेबिलिटी होती है. जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजेक्शन पब्लिक होते हैं, तो आप पूरा का पूरा ट्रेस कर सकते हो पैसा यहां से कहां गया, वहां से कहां गया, पूरा का पूरा ट्रेसेबल होता है. तो इस वजह से जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए क्रिप्टो एक अच्छा नजरिया नहीं है. इनफैक्ट क्रिप्टो के अंदर जितने भी, अगर किसी ने यूज किया भी होगा बहुत कम, वो बहुत सारे पकड़े भी गए अगर आप देखोगे डेटा रिपोर्ट्स, राइट. दूसरा, क्रिप्टो में 2019 में अगर आप देखोगे तो एक तो परसेंटेज कम होता है, दूसरा ये परसेंटेज लगभग 2% के आसपास था, 1 point, और आज के रेट में इन जस्ट 2 years इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, ये परसेंटेज 0.19% हो गया है. और ये फियट से, जो फियट सिस्टम है उससे बहुत बेटर है और बहुत तेजी से कम भी हो रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के ऊपर बना, टेक्नोलॉजी के अराउंड आप टूल्स बना सकते हो जिससे कि ये यूज केस कम हो पाए. जैसे कैश है, कैश एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, ट्रेसेबिलिटी नहीं रहती, कुछ नहीं पता कहां गया. बट अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे अगर बिटकॉइन जा रहा है तो पूरा का पूरा ट्रेसेबिलिटी तो हमेशा रहेगा. तो ये फायदा होता है. तो टेक्नोलॉजी, मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी को अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो बहुत फायदा करता है. और टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी के अदर साइड्स भी होता है, इंटरनेट में भी बहुत उसके भी नेगेटिव चीजें होती हैं, बट आप उसकी पॉजिटिव चीजों को आप यूज करो और नेगेटिव चीजों को आप कम करो.
इज इट ट्रू कि दुनिया का बहुत ज्यादा ब्लैक मनी क्रिप्टो में है? ऐसे ऐसे भी रूमर्स होते हैं, एंड इन्हीं पार्टीज में लोग ऐसे सवाल करते हैं कि यार नहीं, गैंगस्टर्स डाल देते क्रिप्टो में पैसे, इसके पीछे सच क्या है?
ये आई वुड नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक ये जो सारे एक्सचेंजेस होते हैं ना, वो सारे के सारे एक्सचेंजेस KYC वेरीफाई करते हैं. अगर आप CoinDesX पे अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहेंगे तो आप ट्रांजैक्शन करने से पहले आपकी सारी आइडेंटिटी एक्सचेंजेस वेरीफाई करते हैं कि आप ही हो जो खरीद रहे हो या कोई और खरीद रहा है. तो ऐसे जब सिस्टम्स होते हैं ना तो ये नहीं होता, बिकॉज ये सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट मांग भी सकती है एंड ये सारा अवेलेबल, लाइक आप सबमिट करते हो तो आइडेंटिटी आपकी छुपी नहीं होती. तो कोई ऐसा ब्लैक मनी में इन्वेस्ट करे वो कर ही नहीं सकता, और सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं. मतलब अगर आप खरीद रहे हो तो किसी और के अकाउंट का पैसा आप यूज भी नहीं कर सकते, आपके अकाउंट से ही आना चाहिए और आपके अकाउंट में ही जाना चाहिए. तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल.
भाई वैसे तो मैं आपको मेटावर्स और NFT के बारे में भी सवाल पूछने वाला था, बट आई फील कि इस एपिसोड में हमें सिर्फ क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बातें करनी चाहिए. एक आखिरी सवाल है कि अगर आम जनता को क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानना है अब, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? मेरी सजेशन है ट्विटर, और ट्विटर पे राइट अकाउंट्स, और राइट अकाउंट्स में सुमित गुप्ता ऑफ CoinDesX ना पर आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि मैं आपके अकाउंट से सीखता हूँ बहुत सा.
श्योर. अगर किसी को क्रिप्टो के बारे में जानना है तो बहुत सारे चैनल्स, मटेरियल अवेलेबल है. मैं भी बहुत बात करता रहता हूँ क्रिप्टो के बारे में, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, लिंक्डइन पे अपने थॉट्स शेयर करता रहता हूँ. CoinDesX का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे हम लेटेस्ट क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में वो भी पब्लिश करते रहते हैं, ताकि हमारे जो यूजर्स हैं या जो कम्युनिटी है उनको पता चलता रहे. बिकॉज थोड़ा टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करके रेगुलरली कंटेंट डालते रहते हैं ताकि लोगों को पता रहे टेक्नोलॉजी के बारे में. तो यूट्यूब में आप सीख सकते हो CoinDesX चैनल पे, आप ट्विटर पे आप सीख सकते हो, फॉलो कर सकते हो CoinDesX को, मैं भी बात करता रहता हूँ, आप वो देख सकते हो. बहुत इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आपको अगर सीखना है आप वो गूगल करो, बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, आप देखो जो क्रेडिबल सोर्स है वहां से आप पढ़ सकते हो. बट अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो वहां पे आपको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए. और अगर ऐसी चीज लगती है जिसमें बहुत चीज लुक्रेटिव लग रही है, या ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, या तो बहुत अच्छा इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उससे आपको डबल सावधान रहना चाहिए, मेरा ये मानना है.
मैं बस एंड में यही कहना चाहूंगा कि इंडिया में अब और बहुत सारे Web3 के स्टार्टअप्स बनेंगे, आप भी उस उन Web3 स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप शायद स्टार्ट कर सकते हो, पर पहले इन चीज़ों के बारे में सीखिए, Web3 के बारे में सीखिए, मेटावर्स के बारे में सीखिए, NFTs के बारे में सीखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखिए, बिकॉज दैट इज द प्रेजेंट. अब वेब थ्री की दुनिया में क्या चल रहा है और आगे वेब थ्री के दुनिया में होने क्या वाला है, ऐसे इंसानों से सीखिए. सुमित गुप्ता भाई, कोई साइनिंग ऑफ नोट्स है वेब थ्री को लेकर?
आई थिंक वेब थ्री इज द फ्यूचर, एंड जितना आप फ्यूचर के करीब रहोगे उतना आप समय में आगे रहोगे, उतना आप पैसा कमा सकते हो, उतना आप रिवॉर्ड पा सकते हो, उतना आप अपने लोगों से बात करोगे तो आप डिस्कशन कर पाओगे. जो आप आज समझ रहे हो अगर कुछ काम का लगा तो आप और लोगों को बताओगे, वो और लोग बताएंगे. आई थिंक ऐसे ही और लोग इसके बारे में अवेयर रहेंगे, वो ओवरऑल सबके लिए अच्छा है. और आई थिंक टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड. मैं तो बहुत बुलिश हूँ कि वेब थ्री आने वाले समय में हमारे जो हम इंटरनेट के अंदर करते हैं, मेटावर्स, NFTs, क्रिप्टोज, अगले 10 साल में आप जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे, और ये होने वाला है और ये हो रहा है. तो जितना आप इससे अपने आप को अवेयर करेंगे उतना बेटर है.
एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई पुट 5% to 10% ऑफ माई ओन पोर्टफोलियो इन वेब थ्री एसेट्स. मैं वेब थ्री में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ खुद. इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो कॉन्वर्सेशन होती है, उन कॉन्वर्सेशन से आप फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो. कीपिंग ऑल दैट माइंड, वेब थ्री के बारे में मेरी बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, एंड आई ऑल्सो फील कि इंडिया विल बी द king of web 3,
india will be the leader of web 3 in the next few years because of people like Sandeep, because of all the entrepreneurs that are coming out. and india mein agar aap dekhenge, india mein india ki ek power hoti hai, jaise main aapko bata raha tha ki ye jo puri technology, ye jo puri industry, ye puri technology pe based hai. aur agar koi ek aisa desh hai jo ki technology mein bahut powerful hai, wo hai bharat. to bharat ke paas bahut acha mauka hai to become the leader of web 3 globally.
and agar वेब थ्री के लीडर बन गए, सोने की चिड़िया फिर से बन सकते,
फिर से बनेंगे.
और वो वेब थ्री इज द पाथ टू बिकमिंग सोने की चिड़िया, ये याद रखिए. इस पॉडकास्ट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लुक आउट फॉर पार्ट टू ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन विद सुमित गुप्ता भाई. बहुत हम्बल इंसान है, लाइफ में यूनिकॉर्न बनाए हैं, पैसे कमाए हैं, क्रिप्टो के बारे में सीखा है, बट बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते. उस एपिसोड में इनकी स्टोरी हम कवर करेंगे. सुमित गुप्ता भाई, थैंक यू,
थैंक यू,
थैंक यू फॉर एवरीथिंग. दोस्तों तो ये था आज का एपिसोड. मुझे ये पता है कि हमारे जो थोड़े धार्मिक एपिसोड होते हैं, हमारे जो एडवेंचरर्स एपिसोड होते हैं, और हमारे जो आर्मी के एपिसोड होते हैं, एंड ऑफकोर्स बॉलीवुड वाले एपिसोड्स, उन एपिसोड्स को व्यूज मिल जाते हैं. पर असली इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स, महत्वपूर्ण एपिसोड्स होते हैं ये, जहां आपको पर्सनल फाइनेंस की इतनी तगड़ी एडुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. दैट्स वाई आई लव पीपल लाइक सुमित गुप्ता, जिन्होंने वेब थ्री को, क्रिप्टो करेंसीज को, पर्सनल फाइनेंस को उनके खुद के लाइफ का कर्तव्य बना दिया है. दिस कंट्री इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ पीपल लाइक गुप्ता साहब. सुमित गुप्ता फिर से इस पॉडकास्ट पर लौट के आएंगे. ऑफकोर्स मैंने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे लिंक कर दिए हैं, प्लीज उनको जाके फॉलो कीजिए, बिकॉज ओनली वेन इंडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग एंटरप्रेन्योर्स विल इंडिया चेंज. एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट कीजिए, इंडिया में बदलाव लाइए, और क्रिप्टो करेंसीज, वेब थ्री, NFTs के बारे में ज्यादा सीखिए. यह है TRS हिंदी.
क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता. समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें.